ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् जं जस्स जम्मि देशे येन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदम् जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस्सतं मिदेशे तेन विहाणेन तं मि कालं मि कोसकदिवारेदुम् इन्दो वा तजिनिन्दो वा एवं जोणिषयदो जानदि दौवाणि सौवपज्जाये सो सद्दिष्टि शुद्धो जो संकदिशो कुदिष्टि।
ये मंगलाचरण में जो बात कही है ये क्यों कही है, ये कैसे सिद्ध हो सकती है, उस संबंधी जो हमारे पास जिनागम के आधार से अन्य अन्य सिद्धांत है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इस सभी चर्चाओं के द्वारा जो निमित्त उपादान है, चार अभाव है, षटकारक है, पांच समवाय है, उसके द्वारा वस्तु की यानी पर्याय की, द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता का भान होता है और निश्चित समय पर निश्चित पर्याय द्रव्य के अपने स्वयं की शक्ति से उत्पन्न होती है, उसे टालने में कोई भी समर्थ नहीं है, ये बात सिद्ध होती है। मंगलाचरण तो हम उसका अर्थ तो बाद में करेंगे, अभी तो हम उन सिद्धांतों को देख रहे हैं कि जिनके कारण हम उस क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय तक पहुंच सके। हमने कल से पांच समवायों की बात प्रारंभ की थी, जो स्वभाव है, पुरुषार्थ है, काल लब्धि, होनहार और निमित्त, ये जो पांच समवाय है उसमें हमने देखा है स्वभाव तो अनादि अनंत विद्यमान है। स्वभाव में त्रिकाली उपादान को भी लेना है और क्षणिक उपादान को भी स्वभाव में ही लेना है। प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वभाव है, हम तो ऐसा कहते हैं जीव का स्वभाव जानना देखना, तो ये तो जानना देखना स्वभाव तो प्रत्येक द्रव्य पर, प्रत्येक जीव द्रव्य पर लागू होगा, परंतु जो क्षणिक उपादान है वो प्रत्येक जीव का अलग अलग है। क्यों? क्योंकि किस समय कौन सी पर्याय रूप परिणमना, ये जो तत्समय की पर्याय की योग्यता रूप जो धर्म है वो प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना विद्यमान है और प्रत्येक द्रव्य का जो अनादि अनंत प्रवाह क्रम है पर्यायों का वो सुनिश्चित है। जीव अनंत है तो अनंत जीवों के अपना अपना क्रम सुनिश्चित है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अरे हाँ इसको सम्यक दर्शन पहले हुआ तो इसको पहला नंबर लग गया, अभी मोक्ष के मार्ग में 608 जीवों में ये पहला नंबर लग गया, ऐसा नहीं है। देखो कल हम दोपहर में चर्चा कर रहे थे कि किसी जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है उसी भूमि में मोक्ष भी जा सकता है, ये तो बात सुनिए ना अपने। हाँ यानी मिथ्या दृष्टि जन्मा है और उसने बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, निक्षायिक भी सम्यक दर्शन होगा, क्षपक श्रेणी भी चढ़ेगा, मोक्ष भी चला जाएगा, यानी संयम वगैरह सब उसमें आ जाए। कोई तो ऐसे जीव है कि असंख्यात बार उसको सम्यक दर्शन हो सकता है, कौन सा पल्ले के असंख्यात विभाग बार, फिर भी बारंबार बारंबार वो सारे मिथ्यात्व में आते, फिर समय दर्शन प्राप्त करते, फिर मिथ्यात्व में आते, फिर समय दर्शन प्राप्त करते। एक बार किसी को समय दर्शन हो जाए तो अधिक से अधिक मिथ्यात्व दशा में कितने काल तक भ्रमण करेगा, यानी उसके बाद उसको मोक्ष होगा ही होगा। हाँ अर्ध पुद्गल परावर्तन का, तो ऐसे भी कोई मुनिराज भी हो सकते हैं कि संयम भावलिंगी मुनिराज, संयम तो धारण किया था पर बाद में मिथ्यात्व में गए और उनका अर्धपुद्गल परावर्तन काल चल रहा है। कोई ऐसे भी है या हुए हैं जिन्होंने तो उपशम श्रेणी चढ़ी थी और उतरे थे, और अभी उनका अर्धपुद्गल परावर्तन काल चल रहा है। कितने ही संयम धारण करके अभी उनका मिथ्यात्व दशा चल रही है। कितने ही जीव देखो, ऐसे जो जीव है ना, वो सभी पर्याय में है, पाए जाते हैं सभी पर्याय में, सभी सूक्ष्म जीव है उनके पर्याप्त अपर्याप्तों में, बादर एकेंद्रियों में पर्याप्त अपर्याप्त में, द्विन्द्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय संगी असंगी पर्याप्त अपर्याप्त, जो 14 जीव समास हम देखते हैं सभी पर्यायों में ऐसे जीव पड़े हैं जिन्होंने पहले सम्यक तो भी प्राप्त किया था और अभी मिथ्या तो दशा चल रही है। सम्यक तो सहित नहीं आए इसमें, कोई आ ही नहीं सकता। तो ऐसे कितने जीव है जिनका अर्धपुद्गल परावर्तन काल चल रहा है पता है? हाँ, अनंत जीव है, क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन इतना लंबा काल है, उसमें ऐसे अनंत जीव पड़े जिन्होंने कभी ना कभी सम्यक तो प्राप्त किया है, और कोई सूक्ष्म निगोद में पड़े हैं, कोई कहीं पड़े, कोई कहीं पड़े, हमें पता ही नहीं ना क्या कैसे क्या है। ये भी विषय निकला था अपना कि सम्यक दृष्टि जीव कितने हैं, तो तीन गतियों में तो असंख्यात है और मनुष्यों में संख्यात है। क्षायिक सम्यक दृष्टि कितने हैं? क्षायिक सम्यक दृष्टि नरकों में कितने हैं? पहले ही नरक में होते हैं, क्षायिक सम्यक दृष्टि पहले ही नरक में होते हैं। वहां पहले नरक में असंख्यात जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि है। भोग भूमि तिर्यंचों में असंख्यात तिर्यंच क्षायिक सम्यक दृष्टि है। देवों में असंख्यात क्षायिक सम्यक दृष्टि है। क्षायिक सम्यक दृष्टि कैसे गए वहां पर? मनुष्यों में प्राप्त कर गए। हर 6 महीने और 8 समय में 608 जीव क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। मोक्ष का तो नियम पढ़ा होगा आपने, यानी दर्शन मोहिनी की क्षपणा करने वाले भी 608 जीव, चारित्र मोहिनी की क्षपणा करने वाले भी 608 जीव, नित्य निगोद में से निकलने वाले भी 608 जीव, मोक्ष जाने वाले भी 608 जीव। तो यही जीव जाकर अन्य अन्य 3-4 गतियों में जो जा रहे हैं क्षायिक समय दृष्टि, तो कितने होते? हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव नए नए क्षायिक समय दर्शन प्राप्त करते हैं, और वे ही मरकर नरक में जाएंगे, कोई देव में जाएंगे, कोई भोग भूमि में जाएंगे। तो वहां का काल इतना लंबा है, अभी नरक में कोई जाता है तो नरक की जो आयु है, पहले नरक की उत्कृष्ट आयु, यहीं से गए हैं ना वहां पर, तो वहां भी असंख्यात जीव क्षायिक समय दृष्टि है। और भी सुनना है, ये तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले जीव कितने गतियों में है अपनी वर्तमान में विद्यमान? जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधना शुरू किया है वो कहाँ कहाँ है अभी? चारों गति में है कि नहीं है? तिर्यंच गति में है कोई? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव कभी तिर्यंच नहीं होता। जिसने तिर्यंच आयु बांधी हो या मनुष्य ने मनुष्य आयु भी बांधी हो तो वो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांधता। यानी भोग भूमि वाले कोई तिर्यंच या मनुष्य तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले नहीं होते। देवों में है, नरक में है, मनुष्य तो होते ही है क्योंकि मनुष्य ही बांधना शुरू करते फिर बाद में चले जाते। तो तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले भी असंख्यात जीव है। कितने? असंख्यात जीव देवों में है और 3 नरक तक वहां भी है जो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं। ऐसे ही जीव भी असंख्यात है और हम तो नंबर लगाना चाहते हैं। ये तो सहज होता है क्योंकि वहां तो इतनी लंबी लंबी आयु है कि उतने काल में तो कितने जो और नए नए तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू करते वहां चले जाते हैं और उसमें से ही कितने ही जीव यहाँ तीर्थंकर रूप से जन्म लेंगे। अभी हम अपना विषय चलाएंगे क्योंकि कर्णान योग की बातें तो ऐसी अद्भुत है ना, हमें एक काल का भी हमें एहसास नहीं होता कि कितना लंबा काल होगा वहां पर। अब हमारी बात जो चल रही थी 5 समवाय संबंधी, 5 समवाय का स्वरूप जानकर हमें बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। अभी भी ये कर्णान योग की बातें पढ़कर फिर लगता है अरे फिर क्या करना, इतने सम्यक दृष्टि है और इतनी बार गिरता है तो क्या फायदा, सम्यक तो प्राप्त करके क्या फायदा। लोग ऐसा भी पूछते हैं ये उपशम श्रेणी से गिरना होता है तो चढ़ते ही क्यों है? आपको कोई पूछने वाला मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, हमें पूछते हैं, हम जाते हैं कहीं कहीं। हम एक बार वो देउलगांव राजा नाम का गांव है, छोटा सा गांव है महाराष्ट्र में, तो एक महिला ने पूछा, वो बिचारे मुनिराज क्या कहा कौन कह रहा है? मिथ्या दृष्टि जो कह रहा है वो बिचारे मुनिराज। हम यहाँ जानते हैं कि उपशम श्रेणी चढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि उतरता है, तो वो क्यों चढ़ते हैं? तो ये सहज होता है कि यहाँ वैसी सहज रूप विशुद्धि होती है, कर्मों की अवस्थाएं सहज बनती है, और उतने छोटे से काल में इतना पुरुषार्थ होता है तो इतनी इतनी असंख्यात गुना निर्जरा कर लेते अपने। ये कुछ इच्छा से कुछ नहीं होता है, सारी बातें सहज ही होती है। वही तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो पर्यायों का क्रम सुनिश्चित है वैसा सहज होता है, हमारे मानने से करने से कुछ नहीं होता है। तो हमारे जो प्रश्न उठे थे कल, हमने देखे थे 114 पृष्ठ पर दूसरे पैराग्राफ में हमने प्रश्न देखे थे कि हमें यदि विशिष्ट कार्य करना हो तो हम इन 5 समवायों को, 5 कारणों के समूह को कहां से ढूंढ निकालेंगे? कार्य तो हमें करना है, कौन सा कार्य करना है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो सम्यक दर्शन के 5 समवाय कहां से लावे, प्रश्न हो सकता है ना। दूसरा क्या प्रश्न? हम सब कार्य करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और नहीं काल लब्धि आई हो तो कोई प्रश्न पूछेगा, हम पुरुषार्थ बहुत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, परंतु अभी हमारा मोक्ष जो है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन से थोड़ा अधिक लंबा है, दूर है। क्या कहा मैंने? किसी जीव का उसकी जो मोक्ष की पर्याय है, और अभी यहां वो पुरुषार्थ कर रहा है, कितना काल बाकी है उसका? 1 पुद्गल परावर्तन। तो उसको यहां पुरुषार्थ करने पर सम्यक दर्शन प्राप्त होगा कि नहीं होगा? सही पुरुषार्थ कर रहा है, नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? पर पुरुषार्थ कर रहा है ना, तो उसका सही पुरुषार्थ भी नहीं हो रहा है। ख्याल में आता है ना, उसका सही पुरुषार्थ भी नहीं हो रहा, उसके कर्मों में उपशमादि भी नहीं हो रहे, सब उसमें लगा लेना, और उसके स्वभाव में उस समय सम्यक दर्शन रूप परिणमित होने की योग्यता भी नहीं है। ये योग्यता अर्लीस्ट कब आएगी? मोक्ष के पहले अर्धपुद्गल परावर्तन काल बाकी होता है। सबको इतने पहले सम्यक दर्शन होता है ऐसी बात नहीं है, किसी को होगा तो कितने पहले हो सकता है? अर्धपुद्गल परावर्तन, एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो जो अर्धपुद्गल परावर्तन वो भी अनंत काल है। अभी ऐसा हमने देखा ना, अर्धपुद्गल परावर्तन काल जिसका चल रहा है और वो सूक्ष्म निगोद में पड़ा है जी, या कुछ किसी भी निगोद में पड़ा है, तो अभी उसके कितने बाकी रहे, कितने अर्धपुद्गल परावर्तन में कितने बाकी है वर्ष? तो हम कहेंगे 12 वर्ष बाकी है, और अभी कहां पड़ा है? निगोद में पड़ा है, तो अभी उसका क्या होगा? तो देखो, निगोद में से तो उसको मोक्ष नहीं हो सकता, तो अभी मोक्ष होने के लिए कहाँ आना पड़ेगा उसको? मनुष्य पर्याय में। कैसे आना पड़ेगा? यानी उसको उस निगोद पर्याय में, अभी सूक्ष्म की बात नहीं कर, हम बादर निगोद देखेंगे, क्योंकि सूक्ष्म से आके कोई मोक्ष नहीं जाता। तो कोई जो एकेंद्रिय में है या बादर निगोद में है, वहां मनुष्य आयु भी बांधेगा, मनुष्य गति भी बांधेगा, वज्र वृषभ नारा सहनन बांधने योग्य भी परिणाम हो गए वहां पर, क्योंकि अभी चरम शरीर ही होने जा रहा है। वहां से निकलेगा, अभी वहां से निकला है इतने लंबे काल के बाद, तो प्रथम उपशम सम्यक तो भी प्राप्त करेगा, फिर उसमें से क्षोपशम भी हो जाएगा, वो तो 8 साल के पहले तो हो ही नहीं सकता है। तो 8 साल के बाद वो संयम भी धारण करेगा, सब समय दृष्टि होगा, क्षायिक समय दृष्टि होगा, क्षपक श्रेणी भी चढ़ेगा, और बिल्कुल उतने काल में मोक्ष जाएगा ही जाएगा। यानी अभी वो निगोद कैसा पुरुषार्थ करेगा, कौन से भाव करेगा, प्रश्न आता है ना। क्या प्रश्न आता है? ये निगोद जीव कैसे शुभ भाव करता होगा? किसी ने मुझे आज तक ये प्रश्न नहीं पूछा, वो निगोद जीव कैसे अशुभ भाव करता होगा? हमें प्रश्न कहाँ पड़ता है? अरे वो क्या शुभ भाव करे, हम यहां कर सकते हैं, हम मनुष्य है ना, तो हम सोच सोच कर शुभ भाव कर सकते हैं, है कि नहीं? सोच सोच कर करते ना, अशुभ भाव होते हैं। हम पूजा में बैठते हैं, देखो सोच समझ कर बैठते हैं, कैसे अच्छे शुभ भाव कर रहे हैं, और बीच में ही कोई दूसरा विचार टपकता है तो, अरे वो तो होता है। तो शुभ भाव भी होते हैं, अशुभ भाव भी होते हैं, अपने समय पर होते हैं। तो करना कि नहीं करना, राग करना कि नहीं करना, क्या कहते हैं, होता है तो राग होता है उसको जानना कि नहीं जानना, हा? कैसे जानना? अभी बात आई थी ना गुरुदेव के प्रवचन, वहां तो ऐसा कहा जो धारणा में लेता है ना, कैसा, मैं राग से भिन्न हूं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से, जो तो ये धारणा में चलता रहे, विकल्प में चलता है, मैं राग से भिन्न हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा ऐसा, ये विकल्प करने से होगा कि नहीं होगा? नहीं, उस जिस काल में राग हो रहा है उसी काल में, पहले तो ज्ञान और राग को एक में करता है, मैं राग करता हूं मानता था, अभी क्या होगा, उसी काल में ये राग का जो ज्ञान हो रहा है वो मेरी पर्याय, ज्ञान की पर्याय मेरी है, राग भिन्न है मेरे से और वे मेरी ज्ञान की पर्याय में जान रहा, जानने में आ रहा है, तो मैं उस रूप हूं, ज्ञानमय हूं और ये भिन्न है मेरे से, तो होते हुए को भिन्न जानना है। हम क्या करते, करना ही छोड़ देना चाहते हैं, राग करो ही मत, राग से भेद ज्ञान करना की जो जो मर्म गुरुदेव ने बताया है, अब विचार करो उस पर, हम करना ही छोड़ना चाहते हैं, पहले काम राग कम करो, कम करने की बात नहीं हो। हाँ, देखो अभी हम क्या देख रहे थे कि हमारी काल लब्धि नहीं आई हो तो क्या मानता है, मात्र काल लब्धि से, काल लब्धि किसको समझ रहा है कि अमुक कितने बजे मुझे समय दर्शन होगा, ये काल लब्धि नहीं है, पर्यायों का जो सुनिश्चित क्रम द्रव्य में विद्यमान है, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना काल अलग है, हम कहेंगे प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है, फिर भी उस अनादि अनंत काल में प्रत्येक पर्याय अपने सुनिश्चित जगह है, उसको उस द्रव्य का और पर्याय का काल कहेंगे। फिर काल लब्धि के बाद न जाने हमारा भवितव्य क्या होगा, हम सब प्रयत्न तो करेंगे ही करेंगे परंतु होनी कुछ और ही होगी, तो मराठी में कहावत है क्या, रोते हुए जाना और मरे की खबर लाना, पहले से रोना चालू कर, मैं अभव्य हूं तो मेरा पुरुषार्थ नहीं चले, तो मेरी काल लब्धि नहीं हुई, तो मैंने तो सब कर लिया, निमित्त ही नहीं मिला, तो ये कुछ करना नहीं चाहता है, यानी उसको अंदर से ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है, और बाकी जो दुनियादारी के बाद में मैं कर दिखाऊंगा, क्यों नहीं कर सकता, कितने ही प्रतिकूलता है तो भी वो करना चाहता है, तो उसकी रुचि कहाँ है, इसका वो दिग्दर्शन है। और क्या है, यदि हमारा भवितव्य ऐसा ही है तो पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है, पुरुषार्थ बिना ही हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि भगवान ने हमारा देखा है, इस समय हमारे समय दर्शन होने का काल है, तो हम पुरुषार्थ क्यों किए, तो पुरुषार्थ भी सहज उस समय उस जाति का हो जाता है, हम पुरुषार्थ को करेंगे परंतु यदि निमित्त ही न मिला तो, ये ऐसे प्रश्न उठते हैं, अभी उसके हम उत्तर देखेंगे। वस्तु की स्वतंत्र कारण कार्य व्यवस्था का रहस्य ख्याल में नहीं लेने से इस तरह के अनेक सवाल उठते हैं, और कारण संबंधी चिंता से, उन्हें जुटाने की चिंता से जीव आकुल व्याकुल हो जाता है। अभी उसको कार्य करने की लगन लगी है परंतु कहाँ उसका लक्ष्य है, अरे मैं इन कारण को कहाँ से ढूंढूं तो मेरा कार्य हो जाए, यानी उसकी अभी कारण विपरीतता और कारण कार्य रहस्य का उसको सच्चा भान ख्याल नहीं है। एक बात सदैव ध्यान में रखो कि तत्वज्ञान सभी आकुलताओं को नष्ट करने वाला है, ये आत्मज्ञान होगा तभी होगा, परंतु तत्वज्ञान को हम सही रूप से जानते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो हमारी लौकिक आकुलताओं को भी बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि कितनी अपनी आकुलता कम हो गई है, स्वाध्याय करने से ही कितनी निराकुलता हो जाती है, पांच समवायों का स्वरूप जानते ही अनंत आकुलता कम होती है, प्रत्येक पर्याय में उस पर्याय के अपने पांच समवाय भी एकत्रित होते हैं, यानी जहां कार्य होने जा रहा है उसके कारण भी वहीं पर विद्यमान रहते हैं, वे स्वयं ही आ मिलते हैं, एकत्रित होते हैं, कोई उन्हें मिलाकर एकत्रित ला नहीं सकता, इतनी स्वतंत्रता है प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय में। वस्तु में अनंत गुण और प्रत्येक गुण की प्रत्येक समय में नई नई पर्याय, नया नया कार्य कब से चला रहा है? निरंतर, अंतर छूटे बिना, एक समय का भी बीच में गैप नहीं है, अंतर नहीं है, निरंतर चलता रहता है। ये पर्याय अपने इच्छानुरूप नहीं होती, परंतु नियत यानी निश्चित वस्तु व्यवस्था के अनुसार होती है। हम तो इच्छा से कुछ कार्य करना चाहे और वो हो जाए तो उसे हम पुरुषार्थ समझते हैं, वो पुरुषार्थ नहीं है। द्रव्य में स्वतंत्रता से अपनी पर्याय स्वसमय में द्रव्य स्वयं करता है, वही द्रव्य का पुरुषार्थ है। हमने मैं मनुष्य मान लिया अपने को, मैं एक जीव द्रव्य, ये अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर मैं मनुष्य, मैं एक ऐसा मानता है, और फिर जो इच्छा रूप विवाह कार्य करता है उसके अनुसार अन्य अन्य द्रव्य परिणमित हो ऐसी चाह रखता है, और यदि हो जाए तो ये मेरा पुरुषार्थ ऐसा मानता है। ये उसकी स्व मानने में भी भूल है और पुरुषार्थ के संबंध में भी भूल चलती है। तो क्या है? प्रत्येक कार्य निश्चित वस्तु व्यवस्था के अनुसार होता है। यदि मैंने ऐसा किया होता तो वैसा हो जाता। हम सोचते हैं ना, अरे अरे मैंने ऐसा किया उसके बदले वैसा करता तो ये ऐसा अच्छा हो जाता। इस तरह अगर मगर की भाषा या यदि तदि की शक्यता वस्तु की स्वतंत्र कार्य कारण कार्य व्यवस्था में नहीं होती। यहां तो सब कुछ नियत है, निश्चित है, कारण भी नियत है और कार्य भी नियत है। कार्य नियत निश्चित है हमने देख लिया, तो उसके कारण भी निश्चित है। या कारण की तरफ से कहो तो कारण निश्चित है, उसका कार्य भी सुनिश्चित ही है। तो फिर करने धरने के लिए रहा ही क्या? अभी हमने काल लब्धि और भवितव्य इन दो कारणों की चर्चा करते हुए देखा था कि प्रत्येक पर्याय का स्व समय, उसका जन्म क्षण निश्चित है। ये बात कहाँ पढ़ी थी हमने या रेफरेंस आया था? प्रवचन सार में ये लिखा है कि प्रत्येक पर्याय का अपना अपना जन्म क्षण होता है। जन्म क्षण है ना, उसका उत्पन्न होने का समय, उत्पाद का समय निश्चित है, उसको जन्म क्षण कहा है। आगे पीछे नहीं हो सकता। उसी प्रकार यानी समय भी निश्चित है, उसी प्रकार कौन सी पर्याय होगी यह भी निश्चित है। द्रव्य की पर्यायों के अनादि अनंत प्रवाह क्रम में प्रत्येक पर्याय स्वयं की योग्यता से होने वाली ही होती है, यानी कोई भी उस पर्याय को वहां से हटा नहीं सकता है। यह पर्याय शक्ति अथवा योग्यता रूप धर्म प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र अपना अपना विद्यमान है, वह नया प्रकट नहीं होता। ये जो पर्यायों का क्रम है वह भी सुनिश्चित है। केवल विशिष्ट पर्याय निश्चित है इतना ही नहीं, अपितु पूर्ववर्ती पर्याय कि जिसके व्यय पूर्वक वर्तमान पर्याय उत्पन्न होती है वह भी निश्चित है। हमने भी देखा था, ये वर्तमान की पर्याय निश्चित है तो कौन से पर्याय के व्यय पूर्वक ये होगी ये भी निश्चित है, तो पूर्व पर्याय भी निश्चित है। अब वर्तमान की व्यय होकर कौन सी आगामी अनंतर समय में उत्पन्न होगी वो भी निश्चित है, तो पूर्व पर्याय, उसके पूर्व पर्याय, उसके पूर्व पर्याय सब कुछ निश्चित है। उसके पूर्व की सभी पर्याय भी निश्चित है। इसी को विधि, प्रक्रिया या पुरुषार्थ भी कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पुरुषार्थ भी निश्चित है। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव तो अनादि अनंत, त्रिकाल एक रूप ही रहता है, वह नियत है, निश्चित है। इस बात को बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमने इस पुरुष स्वभाव के बारे में बहुत कुछ 2-3 बार इसकी चर्चा की थी। यहाँ पर कोई पूछेगा कि स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, भवितव्य सारा कुछ निश्चित है, क्योंकि ये तो स्वद्रव्य में है, कहाँ ये स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि और भवितव्य होनहार जो है वो कहाँ की बात है? स्वद्रव्य में कहेंगे या द्रव्य में कहेंगे या उपादान में कहेंगे उसको? निमित्त उपादान का भेद करना है तो कहेंगे ये सारी उपादान की बातें हैं। स्व और पर का भेद करना है तो कहेंगे ये सारी बातें स्व में आती हैं, और निमित्त तो परद्रव्य की पर्याय अपनी है उसकी। तो कहते ये सब निश्चित है, परंतु निमित्त को हम ढूंढेंगे तभी और हम चाहेंगे वही हम ला सकते हैं ना, जुटा सकते हैं ना। क्या कहे? हम चाहें तभी और जिस निमित्त को हम चाहते हैं उसी को ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? नहीं। तो हर कोई यहां से मरकर कहां जाना चाहता है? सुना होगा ना आपने, हाँ, मोक्ष में कोई नहीं चाहता है। हाँ। और यहां से कोई जा नहीं सकता ये मालूम है, वो कहां जाना चाहते हैं? हाँ? स्वर्ग में। क्यों? हमने बचपन में सुना था, मेरी नानी कहती थी, अब यहां क्या हम थोड़ा पुण्य कार्य करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, वहां क्या करेंगे, फिर वहां से समोसरण में जाएंगे, क्योंकि कहीं भी जा सकते हैं ना। हाँ। स्वर्ग में से जाएंगे फिर भगवान के समोसरण में जाएंगे। तो मुझे आप बताओ, यहां की थोड़ी सी अनुकूलता छोड़कर कोई स्वाध्याय में नहीं आना चाहता, और वहां की कितनी अनुकूलता, कितना विषय हो, वो सारा छोड़कर समोसरण में जाएंगे क्या? नंदनवन घूमने जाएंगे? यहां भी हम सारे वो स्विट्जरलैंड घूमेगा, कोई कश्मीर घूमेगा, कोई विदेशों में भ्रमण करेगा, उसको कहां स्वाध्याय की रुचि है? और वहां वहां भी ऐसा ही चलता है। तो दूसरे कोई वहां भाग मिले, वो कहते हम यहां से विदेह क्षेत्र में जाना चाहते। क्यों? कहां जाएंगे विदेह क्षेत्र में? हाँ, सिमंदर भगवान के पास। किसी ने अन्य 19 तीर्थंकरों का नाम लेते हुए मैंने नहीं सुना। सीमंदर के अलावा कोई जुगमंदर, बाहु, सुबाहु, संजा तक किसी के पास नहीं जाना चाहता। क्यों? हमने निमित्त भी निश्चित कर लिया है, हम चाहे तब वही और चाहे जब ही, हमें वो सुनिश्चित जो कोई निमित्त है अब मान लेते हैं। विदेह क्षेत्र में कोई जन्मेगा, वहां भी 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड होते हैं, और विदेह के म्लेच्छ खंड में जन्म लेगा तो, और वहां पर मान लेते जहां तीर्थंकर विराजमान है वहां पर भी जन्म लेगा, तो वहां के परिणाम हो गए ही, ऐसा कौन कह सकता है कि भगवान के समोचरण में जाए और वार्ता सुने? मान लेते, सुन भी लिया, और सुन भी लिया तो हमने तो अनंत बार सुना है, ऐसा शास्त्र में कथन आता है, अनंत बार समोचरण में गया है, भगवान की स्तुति पूजा की है, परंतु उसको सही अर्थ नहीं समझ में आया। जो कार्य आज यहां हो सकता है उसके लिए हम बहानाबाजी बनाते हैं। क्यों? कि मैं विदेह क्षेत्र में चला जाऊंगा। यहां से कोई सम्यक दृष्टि मरकर विदेह में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों विमला बिन, नहीं जाएगा? तो हम मिथ्यात्व में रहना चाहते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? जिसने पहले मनुष्यायु बांधी, विदेह में कौन जाएगा मनुष्य होकर? जिसने मनुष्यायु बांधी, मान लेते हमने मनुष्यायु पहले बांध दी, समय दर्शन के बाद बांधना है तो देव की आयु बांधेगा, तो मनुष्य होना चाहते हैं ना, तो पहले मनुष्यायु बांध ली, अब विदेह में जाना है तो मिथ्या दृष्टि ही रहना पड़ेगा। क्यों आप पूछ रहे? क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है, जिसने मनुष्यायु बांधी है और सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, अब यदि वो सम्यक्त्व के साथ मनुष्य होगा तो भोग भूमि का होगा, और उसके लिए उसको क्षायिक समय दृष्टि होना आवश्यक है। वर्तमान में कोई भी क्षोभसम सम्यक्त्व के साथ भोग भूमि में सम्यक्त्व के साथ नहीं जाएगा, और ना ही विदेह में सम्यक्त्व के साथ जाएगा, जाएगा तो देव में जाएगा। यानी वो विदेह के नाम पर अभी मिथ्या दृष्टि रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि भविष्य में मुझे वो निमित्त मिले। यानी हम किसी खास निमित्त के लिए इंतजार करना चाहते हैं, परंतु अभी पूर्ण अवसर है कि हमें जो सम्य दर्शन का जो उपदेश जितना कार्यकारी है उतना मिल चुका है, मिल रहा है, उससे हम यहाँ कार्य करना नहीं चाहते। अभी तो किसी अन्य कार्यों की रुचि रखते हैं, और फिर ये भविष्य में कर देंगे, वहाँ हमें निमित्त मिलेगा, ये बात कहते हैं। तो हम तो चाहते हैं वही निमित्त ला सकते हैं ना, जुटा सकते हैं ना, ये प्रश्न है। उसका समाधान यह है कि निमित्त तो परद्रव्य की पर्याय है, अर्थात परद्रव्य का कार्य है, वह भी उसके अपने द्रव्य के स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि और भवितव्य के अनुसार ही होगा, जो सब निश्चित है। क्या कहना चाहते हैं? कोई परद्रव्य जो निमित्त रूप है उसमें जो कार्य हो रहा है, निमित्त कोई द्रव्य नहीं होता, उसकी पर्याय होती है। क्या कहा? निमित्त जो है वो परद्रव्य की पर्याय है, तो परद्रव्य की पर्याय उसके अपने स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि और भवितव्य के अनुसार होगी, जो हम उसको ला नहीं सकते। यानी जो निमित्त रूप जो कोई वहां द्रव्य विद्यमान है, पर्याय विद्यमान है, वो भी हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, जो निश्चित है। अन्य द्रव्य की पर्याय वह कैसे कर सकता है? इससे सिद्ध होता है विशिष्ट कार्य का निमित्त भी निश्चित है। यानी कोई निश्चित कार्य की हम बात करते हैं विवक्षित की, तो उसका निमित्त भी निश्चित ही होता है। यह सब स्वयं चलित ऑटोमेटिक व्यवस्था है। कारण कार्य व्यवस्था का रहस्य जानने से हमें वस्तु स्वातंत्रता ज्ञान होता है, हमारी विपरीत मान्यताएं नष्ट होती है। सही जानकारी होना ही वो विपरीत मान्यता के नाश में कार्यकारी है। आकुलता का अंत होता है कर्तृत्व बुद्धि का भूत उतरने से। अब क्या रहे, जो भूत किसी के चढ़ जाता है ना, आपने सुना होगा, तो कोई विपरीत ही कार्य करने लगता है। हमारे भी क्या है, कर्तृत्व का भूत चढ़ा है, तो वो उतरने से अपना उपयोग सहज ही पर्याय और पर्याय के कर्तापने से हटकर, पर्याय को क्यों देखता रहता है, कोई लाना चाहता है, कोई हटाना चाहता है, कोई कायम रखना चाहता है। अब वो जो निश्चित है ही, तो उसमें ना हम कुछ कर सकते हैं, ना कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना हमें लाना है, ना चिंता करना है। वो तो अपने योग्यता से होने ही वाली है और हो ही रही है, तभी पर्याय की ओर देखने की कोई जरूरत ही नहीं रही। तो अपना उपयोग पर्याय से भी हट जाता है और पर्याय के कर्तापने से हटकर स्व स्वभाव पर केंद्रित होता है और सम्यक पुरुषार्थ चालू होता है, सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट होता है। यानी इन तत्वों का निर्णय होना और उसमें उस तत्व विचार में तद्रूप होकर परिणमता है जीव, तो सहज ही ये सारी बातें होती है। पर्याय निश्चित और उनका क्रम भी निश्चित है, इसलिए पांचों ही समवाय निश्चित होने ही चाहिए। इन सभी बातों का यथार्थ ज्ञान होने पर क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत भी अपने ख्याल में आता है, उसका मर्म समझता है। मात्र सभी पर्याय क्रमबद्ध है ये कहने से कुछ नहीं होगा। क्यों? अन्य मति कहते ये सब भगवान ईश्वर जो करता है, जैसा होना है वही होता है, होनी है उसको कौन टाल सकता है, ऐसा वो कहता है। और हम क्या नाम लेते हैं, अरे क्रमबद्ध में जो है वो, जो होना है वो होता है। परंतु उसके पीछे का जो रहस्य अगर हम नहीं जानेंगे, पांच समवाय है, निमित्त उपादान है, पर्याय की जो स्वतंत्रता है उसको जानेंगे नहीं, वस्तु स्वभाव को नहीं जानेंगे और दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव पर नहीं केंद्रित होगी, तो उसका ये क्रमबद्ध पर्याय है ऐसा कहना बेकार है, जिसको तोता रटन कहते हैं। तो उसका मर्म समझता है, उसके संबंध में उठने वाले अनेक प्रश्नों का समाधान प्राप्त करता है। ये जो पांच समवाय है, कौन कौन से द्रव्यों की पर्याय में लगते हैं? हाँ बोलो, पीछे कोई उत्तर देना चाहता है? ये पांच समवाय, हाँ बोलो, प्रत्येक द्रव्य की, जीव द्रव्य के अजीव द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य। तो अजीव द्रव्य में भी पांच समवाय होते हैं, कौन कौन से? तो अजीव द्रव्यों में भी, पांचों जड़ द्रव्यों में भी उसका अपना स्वभाव, उसके अपने जो काल लब्धि, पुरुषार्थ होना, निमित्त सब कुछ लगते हैं। और जीव द्रव्य इतना पराधीन होगा कि उसको ये सब जुटाने पड़ते हैं, है ना? तो जैसे सभी छह द्रव्यों में ये बातें हो रही कि प्रत्येक समय की प्रत्येक पर्याय में ये सभी, जिसको कहेंगे हम समवाय, अनेक कारण स्वयमेव आ मिलते हैं, एकत्रित होते हैं। यही लिखा यहां, अजीव द्रव्यों की पर्यायों में भी ये पांचों ही समवाय पाए जाते हैं। तो फिर क्या जीव इतना पराधीन है कि उसे इन पांच समवायों को ढूंढना पड़ेगा? यानी उसमें भी ये सहज होते हैं। जब विशिष्ट कार्य होने वाला होता है तब ये पांचों ही समवाय सहज आ मिलते हैं, और यदि कार्य नहीं होने वाला हो तो नहीं मिलते। हम कहते ना, हम रोटी नहीं बनाते ना, जाओ आज से नहीं बनाएंगे, तो वो आटे में विशिष्ट रोटी रूप कार्य नहीं बनने वाला है, तो उसके पांचों ही समवाय उसमें नहीं होगी। हम क्या समझते हैं, देखो हमने वो आटा निकाला, हमने रोटी बनाई, तब रोटी बनी कि नहीं बनी? पर कुछ आटा निकालते समय नीचे गिर गया, उसकी रोटी क्यों नहीं बनी? जब वो आटा हमने गूंथा तो कुछ तो थाली में चिपक गया, उसकी रोटी क्यों नहीं बनी? जब तवे पर डाली तो कुछ तो उसका कोयला होके जलकर राख होके निकल गई, उसकी रोटी क्यों नहीं बनी? तो उसके एक एक कण का परिणमन स्वतंत्र है, उसके अपने से होता है। और हम क्या मानते हैं, देखो हमने किया तो होता है, हम नहीं करते तो नहीं होता है। ये घर का कोई काम हम करते नहीं ना तब तक होता ही नहीं है। क्यों बहन? सब बहनों को पता है। क्या पता है? जब तक हम सब ठीक ठाक नहीं रखते हैं तो ऐसे ही पड़ा रहता है, हमारे बिना कोई कार्य ढंग का नहीं होता है। बात सही है कि नहीं? सही है बहन? हाँ, हमारे दादी कहते सही है। जब तक हम नहीं करते तो ये क्या, इन पुरुषों को कुछ समझता ही नहीं है? महिलाएं कार्य करती है तो घर का कार्य सुव्यवस्थित होता है। क्यों बहन, माना है कि नहीं माना? देखो तो जब कार्य नहीं होने वाला हो तो वो कारण नहीं मिलते। अज्ञानी जीव को कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार होने से, ये सब महिलाओं को ले लिया इसमें हो, अज्ञानी जीव को कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार होने से मैं कार्य करूं तो होता है, यदि मैं न करूं तो नहीं होता, इस प्रकार की विपरीत बुद्धि मिथ्या बुद्धि रहती है। तो अभी ऐसा प्रश्न नहीं उठे हम करें कि नहीं करें, अरे तो कर ही नहीं सकता है, पहले में पहले निर्णय करना, होने योग्य होता है तो अब क्या करना, होते हुए कार्य में उसके कारण की निर्णय करना, इतना ही करना है। और जो हम मानते हैं ना, ये कार्य मेरा है, मैं कर सकती हूं, मैंने किया तो होता है, नहीं किया तो नहीं होता, ये बात सब भ्रमण है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे पद पद पर अनुभव भी करते हैं, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम विशिष्ट इष्ट संयोग की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं। किसके लिए? संयोग जिसको हमने इष्ट माना है, उसके प्राप्ति के लिए निरंतर कोई ना कोई प्रयत्न चलता है। पैसों के अभाव में वह बात अप्राप्य लगती है, हमें ऐसा लगता है आज मेरे पास पैसे होते तो ये बात मुझे मिल जाती, इसलिए क्या करता है, पैसे के पीछे दौड़ता है। मान लेते कुछ उसको लॉटरी लगी, कुछ हुआ, कहीं से उसको धन भी मिल गया, पैसों का इंतजाम होने पर भी उस संयोग की प्राप्ति नहीं होती, तब हम दीन दुखी होते हैं। मुंबई में हम देखते हैं करोड़ों पैसे है, रुपए है, और चाहता है अच्छा फ्लैट ले लूं, फिर भी मनपसंद का ढंग का कोई मिलता ही नहीं है। दो दो तीन तीन करोड़ रुपए देने के तैयार है, हाथ में पैसे लेके तैयार है कि मुझे ऐसा अच्छा फ्लैट मिले, नहीं मिल रहा है। पैसे नहीं इसलिए नहीं है, हम क्या सोचते, हमारे पैसे पास पैसे होते तो हम ठीक का इलाज करते। तो जिनके पास पैसे होते उनके घर वालों को अच्छा इलाज होता होगा, वे कभी मरते नहीं होंगे, उनके कोई अच्छे से अच्छे डॉक्टर तो मिल गए, उनके कोई रिएक्शन नहीं आती होगी दवाइयों की। क्यों? हमने जो समझ रखा है पैसों से सारा कुछ होता है, ऐसी बात है ही नहीं। तो कहते हैं पैसों का इंतजाम होने पर भी उस संयोग की प्राप्ति नहीं होती, तब हम दीन दुखी होते हैं। ऐसे वक्त में जिनागम के सिद्धांतों का स्मरण होते ही आकुलता मिट जाती है और शांति उत्पन्न होती है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में आचार्य कार्तिकेय कहते हैं, जो हम रोज मंगलाचरण कह रहे हैं, ये कौन सी गाथा है नंबर बताना, कोई एक हाथ ऊपर करके बताए, अभी देखना नहीं निकाल के कौन सी गाथा है। हम जो रोज मंगलाचरण कहते हैं वो कौन सी गाथा है, नंबर क्या है उसके? हाँ, 221, 22 और 23। हाँ, जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ है, किसने लिखा है? कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है। उसमें कौन सा विषय है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, विषय क्या है? 12 भावना, 12 अनुप्रेक्षा। जिस जीव का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस विधि से, विधि यानी उसकी पूर्व पर्याय भी निश्चित है, जिस विधि से जो जन्म अथवा मरण, दो ही बातें लिखी है, जन्म और मरण, बीच की सभी अवस्थाएं समझ लेना। जन्म से लेकर मरण तक की जो कोई घटनाएं हैं वो सब इसमें गर्भित है। तो जन्म व मरण जिनेंद्र भगवान ने नियत रूप से जाना है, क्यों? वो द्रव्य में होना निश्चित है और यहाँ ज्ञान ने वैसा जाना है। जिनेंद्र भगवान ने जाना है इसलिए होगा, इसी बात नहीं है। वहाँ द्रव्यों में अपनी योग्यता से होने वाला है और हो रहा है, और जिनेंद्र भगवान ने उसके पहले ही जान लिया है, वो ज्ञान की अपनी मान्यता है। तो जैसे जिनेंद्र भगवान ने नियत रूप से जाना है, उस जीव का उसी क्षेत्र में किसी का मरण होगा जिस क्षेत्र में, वहीं पर उसका निश्चित है। वह नहीं जाता तो घर में मरता, ये बात नहीं होती है। उसी काल में उसी विधि से वह अवश्य होता है, उसे टालने में इंद्र अथवा जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। इंद्र को क्यों लिया? ये रागियों में श्रेष्ठ है ना। हाँ, तो जिनेंद्र भगवान तो किसी का कुछ नहीं करते, इंद्र महाराज तो आके हमारी मदद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अरे उनमें तो इतनी सामर्थ्य है कि जम्बूद्वीप को पलटा देवे, तो हमें थोड़ी कुछ मदद तो कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो इंद्र तो नहीं होगे, पर हमारे कोई यक्ष वगैरह व्यंतर तो कुछ मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जो वस्तु की जो पर्याय जिस समय होनी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उसी विधि से वह अवश्य होता है, उसे टालने में इंद्र अथवा जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। इस प्रकार से जो सर्व द्रव्यों और उनकी पर्यायों को जानता है, क्या हम आप सभी द्रव्यों को जानते हैं, उनके सभी पर्यायों को जानते हैं? तो यहाँ क्या लिखा? इस प्रकार जो सभी द्रव्यों और उनकी सभी पर्यायों को जानता है वह सम्यक दृष्टि। ऐसा क्यों लिखा? कौन कहना चाहता है? क्या लिखा है? इस प्रकार जो सभी द्रव्यों को उसकी सभी पर्यायों को जानता है, इसका अर्थ क्या है? बोलो। देखो यहाँ क्या लिखा, बैठ जाओ। इस प्रकार से जो सर्व द्रव्य और उनकी पर्यायों को जानता है यानी निर्णय करता है। जो हम ही अब यहाँ पांच समयों के द्वारा क्या निश्चित कर रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित है। कौन सी पर्याय? अनादि से लेकर अनंत काल तक की, यानी सभी द्रव्यों के सभी अनंत पर्याय ऐसी ही सुनिश्चित है। ऐसा हम निर्णय करते कि नहीं करते? जानते हैं ना, ऐसा ही सभी द्रव्यों में एप्लीकेबल है, लागू होता है, ऐसा तो जान सकते कि नहीं जान सकते? सभी द्रव्यों की सभी पर्याय सुनिश्चित है, अपने निश्चित समय पर अपने पांचों ही समवायों के द्वारा होती है, ऐसा जो जानता है, सभी द्रव्यों को जानता है ना, सभी द्रव्यों में यही बात लागू होती है, ऐसा जो जानता है, यानी जो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करता है, ये बात यहाँ कहना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से जो सर्व द्रव्यों और उनकी पर्यायों को जानता है वह सम्यक दृष्टि है। और जो उसमें शंका करता है ना, ये नहीं हो सकता, मैं कर दिखाऊंगा कोई अन्य, तो वो क्या है? वह मिथ्या दृष्टि है। मारीची की बात हमने कथा सुनी है ना, मैं दूसरा तीर्थंकर हो दिखाऊंगा, क्योंकि उसको पता था इतना लंबा काल त्रस पर्याय में तो नहीं रह सकता, मैं कहाँ जाना पड़ेगा, अरे एक इंद्रियों में जाना ही पड़ेगा, तो इतना लंबा काल और मैं इतनी मिथ्या तो दशा में भटकूंगा, ये नहीं हो सकता। तो जब ऐसा वो कह रहा था, मान रहा था, तो मिथ्या दृष्टि था कि सम्यक दृष्टि था? हाँ, क्योंकि उसके निर्णय नहीं ना, मैं कर दिखाऊंगा अर्थ क्या है? भगवान ने जाना है कुछ और मैं उसके पहले ही कर दिखाऊंगा, ये मान्यता ही मिथ्या दृष्टि की है। जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार ने कहा है, जो कार्य अथवा पर्याय जिस निमित्त द्वारा जिस द्रव्य में जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस प्रकार से होने वाली होगी, वह पर्याय उसी निमित्त द्वारा उसी द्रव्य में उसी क्षेत्र में उसी काल में उसी प्रकार से होती है। देखो, इसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और निमित्त सब कुछ निश्चित सिद्ध हुआ। अभी यहाँ हम पांच समवाय में क्या स्वचतुष्टय और परचतुष्टय निश्चित कर रहे हैं। पांच समवाय में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और निमित्त, इनको बता रहे हैं। कैसे हम देखते? देखो, पांच समवाय में हम द्रव्य का स्वचतुष्टय घटित कर सकते हैं, वह किस प्रकार उसे देखते हैं। स्वभाव में द्रव्य और क्षेत्र शामिल है। स्वभाव वो तो द्रव्य को लिया ना यहाँ पर, काल लब्धि में काल समाविष्ट है, काल लब्धि यानी वो उसकी पर्याय, वो भी उसी में समाविष्ट है। भवितव्य में होने योग्य भाव और पुरुषार्थ में कारण रूप भाव विद्यमान है और निमित्त परद्रव्य की पर्याय है। यानी इसमें हम स्व और पर भी घटित कर सकते हैं, द्रव्य की चतुष्टय भी घटित कर सकते हैं। स्व में स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि और भवितव्य, ये चार समवाय कारण है और पर में निमित्त कारण है। इन्हीं समवायों को निमित्त और उपादान रूप से विभाजित करना हो तो वह इस प्रकार होगा। स्वभाव त्रिकाली उपादान है, पुरुषार्थ अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के व्ययरूप क्षणिक उपादान है और काल लब्धि तथा भवितव्य उस समय की पर्याय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कारण है। निमित्त को तो निमित्त रूप से हमने देखा ही है, अभी इनको द्रव्य और पर्याय में विभाजित करना है। कौन करना चाहता है? हाँ बोलो, मुक्ति बोलो। पांच समवाय में कौन सा समवाय द्रव्य रूप है और बाकी कौन से पर्याय रूप है? हाँ स्वभाव द्रव्य, बहुत अच्छा। हाँ हमें द्रव्य और पर्याय इतना ही लेना है। हम स्व पर नहीं कह रहे, हम द्रव्य और पर्याय में घटित करने। बैठ जाओ, कौन कहना चाहे? हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, काल किसको कहना हम पर्याय को? हाँ बोलो। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ भाव यानी पर्याय में लेना। हाँ एक स्वभाव है वो द्रव्य में आएगा, काल लब्धि है, होनहार है, भवितव्यता जिसको हम कह रहे हैं, पुरुषार्थ भी और यहाँ पर निमित्त भी। ये सब क्या है? निमित्त परद्रव्य की पर्याय और ये बाकी तीन स्वद्रव्य की पर्याय। इस तरह से द्रव्य और पर्याय पर घटित हम कर सकते हैं। अब पांच भावों में लगाना है। पांच भावों के नाम सुने हैं? कौन कहना चाहते हैं पांच भावों के नाम? हाँ बहन बोलो, आपको मालूम है पांच भाव? जीव के असाधारण भाव। हाँ बहुत अच्छा, कौन कौन से हैं? औपशमिक, चाउपशमिक, शायिक, औदयिक और पारिणामिक भाव। इनमें हम लगाएंगे। तो देखो यहाँ पांच भावों के नाम सुने ना, नीचे लगाए। पारिणामिक भाव, औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, क्षायिक भाव और औदयिक भाव जीव के असाधारण भाव है, जो जीव द्रव्य के अलावा अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं पाए जाते। इनमें से पारिणामिक भाव स्वभाव रूप भाव है और अन्य चार भाव पर्याय रूप भाव है, पर्याय है, कार्य है। तो स्वभाव में किस में रखना है? स्वभाव में कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव, क्योंकि वो कार्य रूप नहीं है, वो अनादि अनंत विद्यमान है, तो उसको हम स्वभाव कहेंगे। अब बाकी कौन कौन से रह गए? निमित्त तो परद्रव्य की पर्याय है, उसके अपने भावों में नहीं लेना है। तो अभी हमारे पास है पुरुषार्थ है, काल लब्धि है, होनहार है, इसको हम घटित करेंगे। स्वभाव तो त्रिकाल होता है, उसमें निमित्त की आवश्यकता नहीं होती, परंतु कार्य में निमित्त की उपस्थिति होती है। यहाँ जो जीव के ये पर्याय रूप चार भाव है, उनमें निमित्त रूप से कर्म की विशिष्ट अवस्था पाई जाती है। ये जो हमने चार नाम दिए हैं, जो कोई पर्याय हो रही है उसको हम औपशमिक भी हो सकती है, क्षौपशमिक भी हो सकती है, क्षायिक भी हो सकती है, औदयिक भी हो सकती है। ये नाम क्यों पड़े? ये अलग अलग नाम जो द्रव्य की है, जीव की ही जो बातें हैं, तो उसमें अलग अलग नाम किस ओर से पड़े हैं? कर्म की उदय या कर्म की अवस्था की ओर से, यानी निमित्त की तरफ से उसके नाम है। कौन से? ये जो औदयिकादि जो चार भाव है, उनके नाम किस कारण पड़े हैं? तो निमित्त की ओर से उनके नाम पड़े। जीव में जो मोहराग द्वेष परिणाम होता है, उसके अपने पांच समवायों से हो रहा है, अपने स्व समय पर हो रहे हैं, और वहाँ कर्म की तरफ देखे, निमित्त क्या है? वहाँ कर्म का उदय है। कर्म के उदय ने कराया ऐसा नहीं है, निमित्त कुछ नहीं करता है, फिर भी कथन निमित्त की ओर से होता है। तो क्या नाम दिया उस जीव के भाव को? औदयिक भाव। क्यों? निमित्त क्या था? कर्म का उदय। चूंकि वो जीव में कुछ नहीं करता था, फिर भी निमित्त दिखाई दे रहा है, उसकी उपस्थिति है, तो हमने जीव के भाव को कहा औदयिक भाव। औपशमिक भाव कौन कौन से है पता है आपको? औपशमिक भाव उनके नाम चाहिए मुझे। हाँ पीछे कौन कहना चाहता है? हाँ बोलो। औपशमिक भाव के कोई भी नाम बता जो आपको पता है। हाँ बोलो। हाँ बोलो, किसको मालूम है औपशमिक भाव? गिनाने आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने गिना सकते? गिनाओ। हाँ बोलो। हाँ, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, ये दो ही है औपशमिक भाव। आपने सुना ना उपशम सम्यक्त्व और उपशम चारित्र। हाँ, तो ये औपशमिक भाव है। नाम कैसे पड़ा? कर्मों के उपशम की तरफ से नाम पड़ा है। वो जीव का जो भाव है, वो जीव ने स्वयं अपनी योग्यता से, उसके अपने पुरुषार्थ से, अपने काल लब्धि से, अपने स्व समय की योग्यता से उसमें हो गए। कौन सा? औपशमिक सम्यक्त्व तो हुआ है। उस समय नियम रूप से कर्मों की उपशम रूप अवस्था पाई जाती है। यहाँ औपशमिक सम्यक्त्व तो जीव में घटित होता है, और कर्म में दर्शन मुनि और अनंतानबंदी का उपशम कर्म में उसकी अपनी अवस्था है। फिर भी नाम किस ओर से दिया? निमित्त की ओर से। नाम देने में कोई भ्रम नहीं है, परंतु कर्म ने यह अवस्था कराई है ऐसा यदि मानेंगे तो ये भ्रम है। अब हम क्षयोपशम भाव देखते हैं। क्षयोपशमिक भाव कोई मालूम है आपको? कितने होते ना, नंबर तो गिनाओ। 18 होते। तो ये जो क्षयोपशम हो रहा है उसका नाम तो हमने कर्म की तरफ से दिया। ये कौन से कर्मों में क्षोभशम भाव होते हैं? हमारे पास दो है, घाती कर्म और अघाती कर्म। भाव तो जीव में होते हैं, क्षोभशम कौन से कर्मों में घटित होता है? हाँ, देशघाती में, घाती में। हाँ, वेदनीय में होता है कि नहीं होता? नहीं होता। वेदनी सर्वघाती है कि देशघाती है? बोलो। देशघाती। हाँ, देशघाती। अच्छा, वो घाती है कि आघाती है? तो आप देशघाती क्यों कह रहे हो? हम आपको कुछ भी पूछेंगे। वेदनीय कैसा है, कौन सा है? अरे वो आघाती है। वेदनीय कर्म कौन सा है? अघाती कर्म कौन से है? वेदनीय आयु नाम गोत्र। अरे वो घाती है ही नहीं है, इसलिए हमने पूछा वो सर्वघाती है कि देशघाती है। वो तो अघाती है। तो ये जो ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मोनी और अंतरा है, इन्हीं में वो क्षोभशम घटित होगा। केवल ज्ञानावरण का क्षोभशम कब होता है, कौन से गुणस्थान में? हाँ, मैंने क्षोभशम पूछा, होता ही नहीं। सर्वघाती प्रकृतियों में क्षोभशम होता ही नहीं। अब लगाओ केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा के पांच, जो अन्य अन्य जो है सर्वघाती प्रकृतियां, उसमें कोई क्षोभशम नहीं पाया जाता। क्योंकि क्षोभशम की परिभाषा क्या है, किसको याद है? हाँ बोलो बोलो। हाँ मैं रिपीट करूंगी, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। फिर हाँ, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों के, उन्हीं ने सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, और उदय किसका? देशघाती का उदय। तो ये सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक कौन से प्रकृतियों में होते हैं? देखो ये दो शब्द आएंगे, सर्वघाती प्रकृति नाम आएगा और सर्वघाती स्पर्धक, ये दो अलग अलग नाम है। जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं कौन सी? केवल ज्ञानावरण है, केवल दर्शनावरण है, निद्रा आदि जो है, तो उसके सभी स्पर्धक, स्पर्धक किसे कहना? अनुभाग को बताने वाले जो स्पर्धक होते, अभी हम इतनी बात करेंगे, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये जो स्पर्धक है किसके? सर्वघाती प्रकृति, प्रकृति सर्वघाती, और उसके स्पर्धक, एक एक प्रकृति में अनंत स्पर्धक होते हैं जो अनुभाग को बताते हैं। तो उसके सभी स्पर्धक कैसे हैं? सर्वघाती ही होते हैं। किसकी बात चल रही है? सर्वघाती प्रकृति के सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं। अब देशघाती के सभी स्पर्धक कैसे होते हैं? हाँ, देशघाती प्रकृति है और उसके स्पर्धक दोनों ही हैं। कौन से? सर्वघाती भी और देशघाती भी। हम मति ज्ञानावरण पर घटित करेंगे। मति ज्ञानावरण का बंध कब होता है? अनादि से लेकर दसवें गुणस्थान के अंत तक। तो कैसा बंध हो रहा है? वो है देशघाती प्रकृति। तो उसके सर्वघाती स्पर्धक भी देशघाती भी स्पर्धक बन रहे हैं हर समय। अभी हमें आप मति ज्ञान चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाँ, तो बारहवें गुणस्थान तक ऐसे कौन से जीव है, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, कि जिसको मति ज्ञान नहीं होगा कुछ समय के लिए? कोई भी नहीं है। यानी हर जीवों को मति ज्ञान श्रुत ज्ञान चल रहा है। इसका अर्थ क्या है? यदि मति ज्ञानावरण कर्म में स्पर्धक कौन से हैं? दोनों ही हैं, सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो जाए तो क्या होगा? जीव जड़ हो जाएगा, ज्ञान से रहित हो जाएगा। परंतु अभी जो आपने क्षोभम की परिभाषा देखी उसमें क्या कहा? सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। उसका सर्वघाती रूप से उदय नहीं होता है, वे टर्न होकर देशघाती रूप से उदय में आते हैं। परमाणु जो उदय रूप हो रहे वो तो उदय में आएंगे ही आएंगे। वो सर्वघाती हुए तो क्या हुआ? वे परमाणु तो अभी खिर रहे हैं, किस रूप से खिरेंगे? देशघाती रूप से खिरेंगे। तो उसको कहा उदयाभावी क्षय। भविष्य में वो सर्वघाती पड़े हैं और उदय देशघाती का होता है। तो हमारा मति ज्ञान चलता रहता है। अभी तो अपना समय होने को आया है, तो ये जो क्षयोपशमिक भाव होते हैं वो कौन से प्रकृतियों में घटित किए हमने? देशघाती प्रकृतियों में। अभी ये विषय तो वैसा थोड़ा अधिक समय चाहता है, उसके लिए 10-15 मिनट तो चाहिए क्षयोपशम क्या होता है समझाने के लिए। हमारा वो विषय नहीं है, फिर भी हमने थोड़ा उसको यहाँ देख लिया है। तो कर्मों में क्षोभम रूप अवस्था होती है और जीव में जो भाव है कौन सा? अभी हम ज्ञान की बात करें तो जीव में जो क्षोभम भाव होता है वो क्यों होता है? कर्म के क्षोभम से होता है ना। कर्म के क्षोभम के कारण जीव में क्षोभमिक ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं। तो क्यों होता है? अपने स्वभाव से, अपने चार समय उसके पास है, उसके होता है। और सामने कर्म में निमित्त रूप से क्षोभम पाया जाता है। परंतु कर्म का क्षोभम हुआ इसलिए जीव को क्षोभमिक ज्ञान हुआ, ऐसी बात नहीं है। उसकी जितनी ज्ञान की योग्यता अपने से है, तब सामने वैसा ही क्षोभम रूप ज्ञानावरण का क्षोभम विद्यमान रहता ही है। जब ज्ञान की हीनता होती है तो सामने निमित्त रूप से कोई हो सकता है, उसको कोई बीमारी हो जाएगी, उसके कोई कोमा में चला जाए, उसके कोई इंजेक्शन लगा दे या एनेस्थीसिया लगा दे। परंतु ये पांचों ही समवाय वहां विद्यमान रहते हैं। और अधिक चर्चा हम शाम को करेंगे, अभी समय हो गया। बोलो 2400 भगवान की जय।